एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट मॉर्गन के एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास गैप क्रीक पर।
हाँ हाँ, गैप क्रीक, ये वही उपन्यास है जिसे मुझे याद है 2000 में ओपराज बुक क्लब में चुना गया था और इसने वाकई मतलब दुनिया भर के पाठकों पर गहरा असर डाला था।
बिल्कुल, और रॉबर्ट मॉर्गन जो खुद उत्तरी कैरोलिना के अपालाचिन पहाड़ों से हैं, वो अपनी कविताओं और उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में उस इलाके का जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास, इसकी एक गहरी छाप दिखती है।
हाँ, और गैप क्रीक में तो ये चीज बहुत उभर कर आती है। एक तरफ काव्यात्मक भाषा है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, बड़ा अच्छा संगम है।
सही कहा, ये कहानियां में ले जाती है 20वीं सदी की एकदम शुरुआत में, मतलब मान लीजिए 1906 के आसपास। जगह है अपालाचिया, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना की सीमा पर वो पहाड़ी इलाका।
और कहानी फोकस करती है एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े पर, जूली और हैंक। उनके जीवन का सिर्फ एक साल, बस एक साल का सफर है ये।
लेकिन वो एक साल कोई आसान साल नहीं है। इस उपन्यास को अक्सर अमेरिकी यथार्थवाद और क्षेत्रवाद की परंपरा में रखा जाता है, मतलब ऐसी कहानियां जो किसी खास इलाके के आम लोगों की जिंदगी को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती हैं, उसकी पूरी सच्चाई, पूरी कठोरता के साथ।
बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे गैप क्रीक की कहानी की परतों को खोलने की, किरदारों के सफर को समझने की।
हाँ, और इसमें जो विषय हैं, जैसे संघर्ष, अस्तित्व की लड़ाई, इंसान का वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा, उन पर भी गौर करेंगे। तो शुरू करें?
जरूर जरूर। तो कहानी की नायिका है 17 साल की जूली हार्मन। मॉर्गन उसे एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाते हैं जिसके हाथ, जैसा आपने कहा, कभी खाली नहीं रहते। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, बहुत एक्टिव।
और कम उम्र में ही उसने बहुत कुछ देख लिया है, नुकसान, जिम्मेदारियां, ये सब।
हाँ, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े नुकसान से, उसके पिता की मौत, और फिर परिवार की जमीन भी हाथ से निकल जाती है।
अच्छा, और इसी मुश्किल वक्त में,
इसी मुश्किल दौर में वो लगभग फौरन ही 18 साल के हैंक रिचर्ड से शादी कर लेती है। हैंक महत्वाकांक्षी है, मेहनती भी है, पर उनकी शादी ऐसा लगता है जैसे गहरे प्यार से ज्यादा एक प्रैक्टिकल फैसला हो, एक तरह का बचाव का रास्ता।
एक तरह का समझौता शायद, जीने के लिए।
हाँ, कह सकते हैं। और इसी समझौते के साथ वो निकल पड़ते हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में, दक्षिणी कैरोलिना की गैप क्रीक घाटी की तरफ।
गैप क्रीक?
हाँ, हैंक ने वहां मिस्टर पेंडरग्रास नाम के एक आदमी से किराए पर एक छोटा सा फार्म लिया है। तो मन में युवा उम्मीदें हैं, एक नई शुरुआत का सपना है, लेकिन गैप क्रीक पहुंचते ही
उनका सामना होता है जिंदगी की नंगी सच्चाई से,
है ना?
बिल्कुल।
और ये गैप क्रीक घाटी भी मतलब बड़ी अजीब जगह है। मॉर्गन ने इसे ऐसे दिखाया है जैसे ये एक ही वक्त में पनाह भी देती है
और कैद भी करती है।
हाँ, प्रकृति वहां खूबसूरत तो है पर उतनी ही बेरहम भी।
सही कहा।
और यहीं से उपन्यास का वो जो सेंट्रल टेंशन है वो शुरू होता है। इंसान की इच्छाएं बनाम प्रकृति की ताकतें, प्यार बनाम जिंदा रहने की लड़ाई।
हाँ, और आजादी की चाह लेकिन समुदाय पर निर्भरता भी, ये सब चीजें टकराती हैं।
अच्छा, शुरुआती चुनौतियों की बात करें तो घर संभालना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है जूली के लिए। उसका दिन बस अंतहीन कामों में बीतता है, खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, फिर मौसम के हिसाब से अचार डालना, चीजें सुखाना। पटना पड़ता है अपने मकान मालिक मिस्टर पेंडरग्रास्ट और उनकी बीमार पत्नी माउडे से।
हाँ, वो पेंडरग्रास्ट शुरू में तो बड़े कठोर और मतलब बेदिल से लगते हैं। वो उस मुश्किल आर्थिक सच्चाई का प्रतीक है जिससे जूली और हैंक जूझ रहे हैं।
जी, कुछ विवरणों में हैंक की एक बीमार और थोड़ी मानसिक रूप से अस्थिर बहन एनी का भी जिक्र आता है। वो उनके साथ रहने आती है और घर में तनाव और बढ़ जाता है, वो पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और भारी हो जाता है।
और फिर आती है पहली बड़ी मुसीबत।
हाँ, वो आग वाली घटना।
हाँ,
हैंक की एक छोटी सी लापरवाही और उनके किराए के घर में आग लग जाती है।
ओ, सब कुछ खत्म।
सब कुछ जलकर राख, उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो भी गया। और ये उनके रिश्ते की पहली मतलब बहुत गंभीर परीक्षा होती है।
ये आग सिर्फ उनका घर नहीं जलाती शायद, ये उनके सपनों को, उनकी सुरक्षा के उस छोटे से एहसास को भी जला देती है।
हाँ, बिल्कुल। और यहीं से साफ हो जाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ रोमानी ख्यालों पर नहीं टिकने वाला, ये तो मुश्किलों में साथ निभाने की कसौटी पर ही कसा जाएगा।
अब बेघर होकर उन्हें कहाँ रहना पड़ता है?
उन्हें पेंडेग्रास्ट की जमीन पर ही एक पुराना टूटा फूटा सा स्मोक हाउस मतलब धूम्र घर मिलता है रहने के लिए, बहुत बुरी हालत में।
इससे तो उनका कर्ज और उनकी निर्भरता और बढ़ गई होगी।
बिल्कुल, हैंक इस स्थिति से बहुत शर्मिंदा है। उसका वो जो मर्द वाला अहंकार है वो आहत होता है। लेकिन जूली वो हालात का सामना ज्यादा यथार्थवादी तरीके से करती है। उसे पता है कि जीना है तो ये सब करना पड़ेगा।
ये फर्क बहुत दिलचस्प है, हैंक की शर्मिंदगी और जूली का यथार्थवाद। ये न सिर्फ उनके किरदारों का फर्क दिखाता है, बल्कि शायद यहीं से उनके रिश्ते की आगे की डायनामिक्स भी तय हो रही हैं। जूली समझ रही है कि टिके रहने के लिए भावनाओं से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी चाहिए।
हाँ, और मुश्किलें कम नहीं होती। भयानक सर्दी आ पड़ती है, हाड़ कंपा देने वाली ठंड,
खाने की कमी
और गहराता हुआ अकेलापन। हैंक को काम ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, और इसी मुश्किल वक्त में कुछ अजनबी उनके दरवाजे पर आ जाते हैं, शायद कानून से भागे हुए लोग।
ये एक और परीक्षा। एक तरफ वो पहाड़ों की मेहमान नवाजी की परंपरा,
और दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा का सवाल। यहाँ जूली का साहस और उसकी सूझबूझ फिर काम आती है। उसे बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है।
और इसी अंधेरे मुश्किल दौर के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण।
हाँ, एक नन्ही सी किरण। जूली को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ये खुशी भी चिंता और डर से घिरी हुई है। माहौल ही ऐसा है।
और फिर आता है उपन्यास का सबसे, शायद सबसे नाटकीय और दहला देने वाला मोड़, गैप क्रीक नदी में वो विनाशकारी बाढ़।
वो मंजर तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाढ़ का पानी तेजी से उस छोटे से स्मोक हाउस में घुसने लगता है। जूली घर में अकेली है, अकेली,
और पानी बढ़ता जा रहा है।
हाँ, जानलेवा हद तक बढ़ रहा है। अपनी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान बचाने के लिए वो किसी तरह छत के बीम, वो जो कड़ियां होती हैं, उन पर चढ़ जाती है। नीचे बर्फीला तेज बहता पानी और ऊपर वो अकेली, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। ये उसकी हिम्मत और वो जो माँ बनने की प्रवृत्ति होती है उसका चरम है।
अविश्वसनीय, वो बच तो जाती है, लेकिन ये बाढ़ ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं लगती। कुछ लोग उसे एक मेटाफर की तरह भी देखते हैं, एक तरह की सफाई जो सब कुछ बहा ले जाती है।
हाँ बिल्कुल, ये घटना जूली और हैंक को और शायद पढ़ने वाले को भी जीवन के वो जो बुनियादी सवाल हैं उनसे रूबरू कराती है कि आखिर जीने का मतलब क्या है, इंसान किन हदों तक जा सकता है।
और यहाँ प्रकृति का वो रूप दिखता है जो ना अच्छा है ना बुरा है, वो बस है, उदासीन। जैसा मॉर्गन ने कहीं लिखा है भावार्थ में, सर्दी को परवाह नहीं कि तुम अच्छे हो या बुरे, सर्दी बस है और तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, वरना वो तुम्हें मार डालेगी।
बिल्कुल, इंसान कितना भी जोर लगा ले, प्रकृति की अपनी ताकत है, उसके साथ तालमेल बिठाना ही पड़ता है।
बाढ़ के बाद का मंजर तो और भी दर्दनाक रहा होगा, पूरी घाटी में तबाही।
हाँ, उनकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, और उस भयानक अनुभव का गहरा सदमा वो जूली की गर्भावस्था पर भी असर डालता है।
वसंत आता है लेकिन राहत लेकर नहीं आता।
नहीं, जूली का प्रसव होता है, बहुत लंबा, बहुत तकलीफ दे। गांव की एक दाई मदद करती है, लेकिन अंत में बच्ची मृत पैदा होती है, स्टिल बर्थ।
ओ नहीं,
ये उपन्यास का शायद सबसे गहरा, सबसे तोड़ देने वाला भावनात्मक आघात है।
जूली के दुख का चित्रण कैसा है? वो महसूस करती है जैसे उसका एक हिस्सा काटकर पहाड़ी पर दफना दिया गया हो, लेकिन क्या उसे शोक मनाने का वक्त मिलता है?
नहीं, यही तो जिंदगी की कठोरता है जो मॉर्गन दिखाते हैं। दुनिया रुकती नहीं है, अगली सुबह सूरज फिर उगता है, और नाश्ता बनाना है और दिन भर के काम करने हैं। उसे अपने दुख को एक तरफ रखकर फिर से जीने की लड़ाई में लगना पड़ता है।
ये उसके भावनात्मक सहन शक्ति की मतलब चरम परीक्षा है।
बिल्कुल,
इस साझा दुख का, इस भयानक नुकसान का उनके रिश्ते पर क्या असर होता है? क्या ये उन्हें तोड़ देता है या और करीब लाता है?
ये उन्हें और करीब लाता है, लेकिन किसी फिल्मी या रोमानी तरीके से नहीं। उनका बंधन और मजबूत होता है क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर एक ऐसा दुख झेला है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
उपन्यास शादी को किसी सपनों की दुनिया की तरह नहीं दिखाता।
हाँ, बल्कि एक कामकाजी साझेदारी के रूप में, जिसे बाहरी हालात लगातार परखते हैं।
बिल्कुल, एक जगह मॉर्गन लिखते हैं, जैसा आपने पहले कहा भावार्थ में, कि आप किसी के साथ रहकर उसे कभी कभी चोट पहुंचाए बिना नहीं रह सकते, और वो भी आपको चोट पहुंचाएगा, और इसी से आप एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा सीखते हैं जो पहले नहीं जानते थे। ये मुश्किल हालात उन्हें एक दूसरे की कमजोरियों और ताकतों को और गहराई से समझने पर मजबूर करते हैं। हैंक जहां निराशा और अपराध बोध में है,
वही जूली एक शांत स्थिर ताकत बनकर उभरती है। वो शायद ये सीख रही है कि असली जीत बड़ी बड़ी सफलताओं में नहीं है, वो तो बस हर रोज हर मुश्किल के बावजूद टिके रहने में, होल्ड ऑन करने में है।
लेकिन क्या सिर्फ टिके रहना ही काफी है? उपन्यास क्या इस संघर्ष की कीमत पर भी सवाल उठाता है?
ये एक अहम सवाल है, और शायद इसी टिके रहने की जद्दोजहद में और कुछ पैसे कमाने की जरूरत में जूली एक और मुश्किल काम अपने जिम्मे लेती है।
वो गंभीर रूप से बीमार मॉडे पेंडेग्रास्ट की देखभाल करने लगती है।
हाँ, और ये काम भी आसान नहीं है। शारीरिक रूप से थका देने वाला है और भावनात्मक रूप से भी। रोज मौत को इतने करीब से देखना। मॉडे दर्द में है, मरणासन्न है।
लेकिन शायद इस काम से जूली को एक मकसद मिलता है, थोड़ी आमदनी भी होती है।
हाँ, और सबसे अनूठी बात यह है कि उसे मरती हुई मॉडे के साथ एक अजीब सा खामोश सा रिश्ता महसूस होता है। मॉडे की तकलीफ का चित्रण पेंडेग्रास्ट परिवार को भी एक मानवीय चेहरा देता है। वो सिर्फ बेरहम मकान मालिक नहीं रह जाते।
हाँ, वो भी अपनी मुश्किलों से जूझ रहे इंसान नजर आते हैं।
और फिर वो साल खत्म होने को आता है, मॉडी की मृत्यु हो जाती है,
और इसके बाद मिस्टर पेंडेग्रास्ट कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
हाँ, वो जूली और हैंक का सारा कर्ज माफ कर देते हैं।
ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है, उनके कंधों से जैसे एक भारी बोझ उतर जाता है। लेकिन क्या इसे हम एक पारंपरिक हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं?
शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। उपन्यास का जो आखिरी दृश्य है वो बहुत शक्तिशाली है। जूली और हैंक बाहर खड़े हैं, सर्दी के मौसम में दूर तक फैले नज़ारे को देख रहे हैं। उन्होंने आग झेली है, बाढ़ झेली है, अपने बच्चे को खोया है, भुखमरी का खतरा सहा है।
उनके पास भौतिक रूप से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा है सिवाय एक दूसरे के साथ के।
और यहीं जूली के जीवन का फलसफा छिपा है। जैसा वो सोचती है, भावार्थ में दुनिया का रहस्य वो करना है जो किया जाना चाहिए। हम साल के अंत तक आ गए थे और हमने हार नहीं मानी थी। टिके रहना, जो जरूरी है वो करते जाना।
और अंत में एक और खबर आती है, जूली फिर से गर्भवती है।
हाँ, ये कोई जोरदार खुशी का ऐलान नहीं है, ये एक बहुत ही शांत, बहुत मेहनत से कमाई हुई उम्मीद है। एक वादा कि जिंदगी आगे बढ़ेगी, वो अगले साल का सामना करने के लिए तैयार हैं, एक साथ।
तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो कई गहरे विषय उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला तो यही है, अस्तित्व की लड़ाई और इंसान का लचीलापन। ये कोई हीरो वाला लचीलापन नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा की जरूरी काम करते हुए मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की खामोश ताकत है। जैसा जूली सोचती है, ये ताज्जुब की बात है कि इंसान किस चीज का आदी हो सकता है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा विषय है शादी की हकीकत। ये कोई परियों की कहानी नहीं, बल्कि एक साझेदारी है जिसे बाहरी दबाव लगातार चुनौती देते हैं।
हाँ, और ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में कैसे दो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं या कैसे उनके बीच दरारें पड़ती हैं।
तीसरा, नारी शक्ति और औरत के श्रम का महत्व। जूली की ताकत कहानी के केंद्र में है। उसका घर का काम, उसकी देखभाल, उसकी सहन शक्ति, ये सब वो काम है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ उपन्यास उन्हें सम्मान देता है। ये उन अनगिनत औरतों की अनकही ताकत को सलाम है।
फिर प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता, वो सुंदर भी है, जानलेवा भी। वो एक ऐसी ताकत है जिसे इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता, बस उसके साथ जीना सीख सकता है।
हाँ, और गरीबी का बोझ, उसका इंसानी गरिमा पर असर, ये भी एक अहम पहलू है।
और इन सब के बीच निराशा में भी उम्मीद की एक धीमी लौ। ये कोई नाटकीय उम्मीद नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहने में सबसे मुश्किल दौर के बाद भी नए मौसम के आने के भरोसे में टिकी हुई एक जिद्दी उम्मीद है।
मॉर्गन के लिखने की शैली भी बहुत खास है। जूली की वो सीधी सरल लेकिन गहरी समझ वाली आवाज, उस इलाके की सच्ची बोली और ऐसे बारीक संवेदी विवरण, गंध, स्पर्श, आवाजें जो कहानी को जैसे जीवंत कर देते हैं।
हाँ, और वो प्रतीक, क्रीक, मौसम, आग, पानी, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
वाकई ये कहानी हमें मुश्किलों को सहने और उनमें टिके रहने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये याद दिलाती है कि शायद असली बहादुरी बड़े कारनामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों में चुपचाप डटे रहने में है।
और जूली का ये लचीलापन, ये खामोश दृढ़ता आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना। मुश्किलों में गरिमा ढूंढना।
हाँ, और ये समझना कि सबसे कठिन समय में भी साझेदारी और साथ खड़े रहने में कितनी ताकत होती है।
तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से आंका जाता है, क्या वहां गैप क्रीक की तरह चुपचाप टिके रहने की इस ताकत का कोई मोल है या मायने बदल गए हैं?
ये एक अच्छा सवाल है, शायद ये सोचने के लिए हम अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।